الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام قرآن میں ذکر کردہ حیوانات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں ان جانوروں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن کا ذکر فرمایا ہے انہی میں سے آج جس جانور کا ذکر ہونے جا رہا ہے عربی میں اسے بقرۃن کہتے ہیں یعنی گائے کس مقام پر اس کا ذکر ہے کیا واقعہ ذکر ہے اور کس انداز میں اس کو ذکر کیا گیا ہے اور کیا کیا اس کے ساتھ فوائد بیان کیے گئے ہیں ان سب کو جانیں گے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں دو عالم کے مالک و مولا حبیب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث میں وارد ہیں بے شمار فضیلتیں ملتی ہیں اس شخص کو کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے دنیا سنورتی ہے آخرت میں فلاحی ملتی ہے اور جنت کی اسے نعمت مل جاتی ہے جنت میں اسے ٹھکانہ مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے والے کا دن نبی پاک کی یاد میں گزرتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب قیامت کے دن مل جائے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی یقیناً سرخرویاں اس کا مقدر ہوں گی اللہ نے چاہا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا بہت پیاری فضیلت ہے حاصل کرنے کے لیے چھوٹا سا عمل ہے درود کی کثرت کرنی ہے شب و روز شام و سحر ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے رہیے رحمتوں کا نزول اپنے اوپر کرواتے رہیے آخرت کا توشہ اکٹھا کرتے رہیے ایک مرتبہ شوق و محبت سے درود پڑھ لیجئے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین ہم جس سمت دیکھیں جس جانب دیکھیں جس چیز کو دیکھیں اور اپنے اوپر ہر ایک اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں کئی کثیر اور بے شمار اللہ رب العالمین کی نعمتیں نظر آتی ہیں خشکی پانی سمندر ہوا درخت جنگل بیابان ہر انسان کو ملنے والی نعمتیں اس کے اعضاء اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اور اس کے علاوہ اور دیگر غذائیں اتنی ساری اتنے سارے مشروبات اتنی ساری بہترین چیزیں جو اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پروردگار عالم کے کتنے احسان کتنے انعام ہیں انہی میں سے ایک نعمت دودھ ہے جو نہ صرف نعمت ایک مکمل غذا بھی بنتی ہے یعنی انسان جس بھی عمر کا ہو بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک یہ دودھ اس کے لیے ایک مفید اور مکمل غذا بنتا ہے اور دودھ کتنی خوبصورت نعمت ہے اور کتنی اس کے فوائد ہیں ان سب پہ بھی بات ہوگی لیکن پہلے جن جانوروں سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے انہی میں عمومی طور پر وہ ہمارے ہاں گائے اور بھینس وغیرہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بقرۃن یعنی گائے کا ذکر موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ایک واقعہ بیان کیا اسی کے تحت اس گائے کا ذکر آیا ہے وہ واقعہ کیا ہے اس واقعے کی ابتدا میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کا ایک بڑا ہی برگزیدہ بندہ ایک نیک بندہ جو اپنی زندگی کو اللہ پاک کی عبادت میں گزار رہا تھا جب اس کا وقت وفات قریب آیا جب بوڑھا ہو گیا اور جوانی ڈھلنے لگی عمر اب اختتام کی طرف جانے لگی تو اس کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا جو اس نے جنگل میں جا کے اللہ رب العالمین کی امانت میں دیا اور اس شخص کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاس ایک بچہ تھا جو ابھی چھوٹا تھا وہ جنگل میں گیا ایک جھاڑی کے پاس اس گائے کے بچے کو چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا الہی یہ جانور یہ گائے کا بچہ میں تجھے سپرد کرتا ہوں جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو یہ تو اسے میری امانت واپس لوٹا دینا اب وقت گزرتا گیا اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا اس نیک شخص کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب ایام گزرتے رہے راتوں نے کروٹیں بدلیں اور پھر وہ دن آئے کہ جب اس کا وہ بچہ बड़ा हुआ, जवान हुआ, ये भी अपने वालिद ही के नक्शे कदम पर था। बड़ा नेक और अपनी वालिदा के साथ बड़ा ही हुस्न सुलूक करने वाला था। इसने अपने दिन के मखसूस औकात रखे हुए थे। अपने वक्त को इसने तीन सूरतों में तकसीम किया हुआ था। एक वक्त ये सोने के लिए अपना इसने रखा हुआ था, एक वक्त खास अल्लाह की इबादत के लिए रखा था, और तीसरे वक्त में ये जाता जंगल से सुबह सवेरे लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने गुजर औकात का सामान करता, और साथ ही वालदा की हर वक्त खिदमत में लगा रहता। जब ये जवान हुआ और इसे इबादत का बड़ा शौक था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से इसकी लौ लगी हुई थी, इसे मजा आता था, लुत्फ होता था, चाहता था कि कुछ ऐसा हो, ये सारी मुझ पर जो जिम्मेदारियां हैं खत्म हो, हर वक्त रब ताला की बारगाह में खड़ा रहूं, कयाम करता रहूं, सरबस सजूद रहूं, उसी की याद में रहूं, उसी की अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द करता रहूं, तस्बीह पढ़ता रहूं। तो एक दिन वालदा ने उसे बताया कि बेटा, तुम्हारे नेक और बरगुजीदा वालिद ने एक गाय के बच्चे को जंगल के अंदर फुलां झाड़ी के पास छोड़ा था और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द किया था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत में देते हुए ये कहा था कि ए अल्लाह, जब मेरा बेटा जवान होकर इसे लेने आया तो मेरी अमानत उसे लौटा देना। जाओ फलां झाड़ी के पास जाओ, जंगल में जाकर यूं कहना कि ए हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक के खुदा, वो अमानत जो मेरे वालिद ने तेरे सुपुर्द की थी उसे लौटा दे, मैं उसे लेने आया हूँ। वो अभी दुआ से फारिग ही हुआ था कि देखा कि एक बड़ी ही खूबसूरत गाय उसके साथ खड़ी है, और गाय ऐसी कि उसका रंग था सफरा, यानी जर्द रंग की, पीले रंग की, देखने वालों को सोने की मालूम होती, और ऐसी लगती, ऐसी खूबसूरत कि देखने वाला यूं समझता है कि इससे सूरज की किरणें निकल रही हैं। अब जब वो गाय आकर खड़ी हुई, कान से पकड़ के उसे अपनी वालदा के पास ले आए, वालदा ने कहा कि बेटा जाओ इसे जाकर बाजार में फरोख्त करो, अपने गुजर बसर का सामान हो जाएगा, तुम इबादत में लगे रहना, गुजर बसर भी होता जाएगा, और ये इतनी मशक्कत करना, ये लकड़ियां काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वालदा ने साथ ये कहा कि इसको 3 दिनार में फरोख्त करना है, लेकिन जब भी सौदा होने लगे तो आकर मुझसे मशवरा लाजमी करना है कि मैं बेचूं या ना बेचूं, इसे बेचना चाहिए कि ना बेचना चाहिए, तो इस बारे में मुझसे लाजमी पूछना, अगर इजाजत दूं तो फिर उसे बेचना, क्योंकि उन दिनों में बाजार में इसकी कीमत यही थी, 3 दिनार में एक अच्छी गाय को बेचा जाता था। वो बच्चा नौजवान की जो माँ का फरमा बरदार था, गाय को बाजार में ले गया। अब बाजार में उसके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि इसे बेचते हो? कहाँ, बेचता हूँ। का कितने में बेचनी है? का 3 दिनार का सौदा करूंगा। तो वो शख्स कहने लगा कि तुम ऐसा करो कि 3 नहीं मुझसे 4 ले लो, लेकिन वालदा से मशवरा ना करो, मुझे ऐसे बेच दो। तो वो नेक शख्स और वालदा का फरमा बरदार जो नौजवान था, वो कहने लगा नहीं, माँ के मशवरे के बगैर, माँ के हुक्म को माने बगैर मैं ये सौदा नहीं कर सकता। तो वो शख्स आया वालदा की तरफ, वालदा से आकर कहने लगा कि वालदा, इसी तरह से एक शख्स मुझसे गाय खरीदता है, जब मैंने उसे 3 दिनार बताया तो उसने कहा 4 ले लो, लेकिन बगैर मशवरे के मुझे बेच दो। अब वालदा समझ चुकी थी, जब वालदा के पास आए तो वालदा ने कहा, बेटा इस बार जब वो आए शख्स, यकीनन वो आम बंदा नहीं है, अब जब वो आए तो उससे पूछ लेना कि आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है, क्या मैं इसे बेचूं या ना बेचूं। अब जब वो दोबारा उस शख्स के पास आए जो कि एक फरिश्ता थे और इंसानी सूरत में आए हुए थे, तो वो कहने लगे कि इसे तुम ना बेचो, एक वक्त आएगा कि जब इसे बनी इसराइल, हजरत मूसा की कौम, इतनी कीमत में खरीदेंगे कि इसकी चमड़े के अंदर सोना भर के आपको देंगे। तो उस शख्स ने इंतजार करते हुए उस गाय को वापस ले जाने का इरादा किया, वापस ले गया। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि बनी इसराइल के अंदर आमील नामी एक बड़ा ही मालो दौलत वाला शख्स, उसी के वरसा में से कुछ लोग थे, और उन्होंने उसे इंतकाल करके एक बयाबान में दो बस्तियों के दरमियान फेंक दिया, और इरादा ये किया कि विरासत से तो हमें माल मिलना ही है, और इसका चूंकि मकतूल जो है, इसके कातिल का पता नहीं चलेगा कि किसने मारा है, तो लिहाजा इन बस्तियों से जो हमें दियत मिलेगी, इजाफी पैसा मिल जाएगा। तो अब इस गर्ज से उन्होंने किसी को बताया नहीं, और यूं करके मालो दौलत की हिरस में, हवस में, उन लोगों ने ये गलत काम किया। अब जब लोग इकट्ठे होकर जनाब सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु वसलाम की बारगाह में आए, सारा माजरा बताने लगे कि यूं यूं करके फला जो मालदार शख्स था उसे कत्ल कर दिया गया है और कातिल का पता नहीं चलता है, तो हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम पर वही हुई कि इन लोगों से कहें कि एक गाय ज़बह करें, और गाय ज़बह करके उसके गोश्त का एक टुकड़ा इस मकतूल को मारें, ये अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाएगा और खुद बताएगा कि इसे किसने कत्ल किया है। अब मामला आसान सा था, छोटी सी चीज थी, एक गाय ज़बह करनी थी और उसके एक टुकड़े को मारना था, लेकिन बनी इसराइल ने बिला वजह सवाल करना शुरू किए, जिसका जिक्र कुरान के पहले सिपारे में मौजूद है। सवालों की कसरत इंसान को बहुत मरतबा फंसा देती है। तो अब कहा कि पूछिए वो कैसी है, उसका रंग कैसा है, वो किस उम्र की है, वो करती क्या है और किस मकाम पर मिलेगी। तो फिर जिस तरह वो सवाल करते गए, कोई उदात बढ़ती गई, वो ऐसी हो कि वो पीली हो, देखने वालों की आंखों को सुरूर देती हो, उन्हें खुशी मिलती हो देखने से। वो ऐसी हो कि जिसने ना कभी खेती बाड़ी की हो, यानी ना हल चलाया हो, ना ही उससे कोई और काम लिया गया हो। वो ऐसी हो कि जो ना बूढ़ी हो ना बच्ची हो, दरमियानी उम्र की हो। अब जब इतनी सारी उन पर शराइत लग गई और वो इस गाय को ढूंढने लगे कि पीले रंग की भी हो, कभी उससे कोई काम भी ना लिया गया हो, तो बिल आखिर घूम फिर कर वो इसी नौजवान नेक सीरत और नेक सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादत गुजार बंदे के पास आए। यहाँ उन्हें वो गाय मिल चुकी थी, चूंकि इन्हें तो पहले से मालूम था कि इस गाय की कीमत कितनी होगी। अब इन्होंने उसी बात का इरादा किया और इन्होंने कहा कि हम इस गाय को उस वक्त तक ना बेचेंगे, या आपसे सिर्फ इसी सूरत में इस गाय का सौदा करेंगे कि जब आप हमें इसके चमड़े के अंदर सोना भर के दें। ये दुनिया की शायद सबसे कीमती गाय थी कि जिसे इतनी कीमत में खरीदा गया, फिर इसी के चमड़े के अंदर वापस सोना भर के दिया गया। तो अब जब उस गाय को ज़बह किया गया, तो अब उसका टुकड़ा गोश्त का जब उस मकतूल को मारा गया, तो उसने बताया कि यही जो मेरे वरसा हैं, इन्होंने माल की हवस में, माल की लालच में अपने इस गलत काम को किया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन पर किसास जारी किया और उन्हें भी कत्ल किया गया। तो एक वाकया तफसील से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल का मौजूद है। इसके अलावा और भी वाकयात का कुरान में जिक्र है जिसका ताल्लुक गाय से होता है। एक तो जनाब सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम का वाकया जो सूरह यूसुफ के अंदर तफसील से मौजूद है, उसके अंदर एक ख्वाब का जिक्र है। अजीज मिस्र ने, मिस्र का जो बादशाह था, उसने जो ख्वाब देखा था कि उसने देखा कि 7 मोटी गायें जिन्हें 7 पतली गायें खा रही हैं। इस ख्वाब की ताबीर के लिए जब उसने मुख्तलिफ लोगों को बुलाया तो किसी की ताबीर पसंद ना आई। बिल आखिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बताई थी जो कि हक थी, और आपको अल्लाह पाक की तरफ से ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाया गया था। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की ताबीर कुछ यूं बयान फरमाई कि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी सल्तनत के अंदर आने वाले अगले 7 साल बहुत ही वाफर अनाज के होंगे, यानी खेतियां अच्छी होंगी, लहलहाते खेत होंगे और अनाज एक कसीर मिकदार में तुम्हें मुयस्सर आएगा। लेकिन उसके बाद जो अगले 7 साल होंगे, ये कहत साली का दौर होगा और इसके अंदर न खेती होगी, पानी की किल्लत होगी, अनाज हर तरफ से मफकूद हो जाएगा। अब जब बादशाह ने ये सुना, ताबीर सुनी, तो उसे वाकई ये ताबीर समझ आई, और वाकई चूंकि ये हकीकत पर मुश्तमिल ताबीर थी, तो अब जनाब सैयदना यूसुफ अला नबीना व अलैहि सलातु वसलाम से पूछा गया कि इसके लिए हम क्या करें। तो आपने कहा कि पहले जो 7 साल है जिसमें अच्छा अनाज होगा, अच्छी खेती होगी, हर तरफ लहलहाते खेत होंगे और वाफर मिकदार में अनाज और ताम लोगों को मुयस्सर आएगा, उन सालों के अंदर आप एक काम कीजिएगा कि साथ ही कुछ ना कुछ स्टोर भी कीजिएगा कि जब इर्द गिर्द के इलाकों में अगले 7 सालों में अनाज नहीं होगा, तब भी आप आसानी से अपनी आया को अनाज दे पाएंगे। और फिर वक्त ने ऐसा ही देखा, जनाब सैयदना यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बनाया गया, मिस्र का गवर्नर बनाया गया, और फिर कहत साली के दौर थे। सूरह यूसुफ के अंदर जिक्र है कि आपके भाई भी इतनी दूर से आपके पास आए थे तब अनाज लेने के लिए, चूंकि हर तरफ अनाज खत्म हो चुका था। तो उस वक्त भी इस सल्तनत के अंदर जो आपने ख्वाब की ताबीर बताई थी, उसके मुताबिक अनाज मौजूद था, और आपकी जो खूबसूरत हिकमत थी जिसकी वजह से आपको अजीज मिस्र भी बनाया गया था, तो इसका जिक्र एक कुरान में मौजूद है। इसके अलावा एक और जिक्र मौजूद है सोने के बछड़े का। ये वाकया भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ही का है। मुख्तसरन ये कि जनाब सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तौरात लेने के लिए, तो अब पीछे आपकी कौम का एक शख्स सामरी जादूगर, उसने क्या किया, उसने अपने तमाम कौम के लोगों से उनका जेवर इकट्ठा किया, सोना इकट्ठा किया, और उन्हें ढाल कर, ये सुनार था जादूगर ने, ये एक सुनार था, और इसने सबसे इकट्ठा करके उसे एक बछड़े की सूरत में ढाल दिया, एक बछड़ा सोने का बनाया, और उसके बाद उस बछड़े के मुंह के अंदर इसने एक खाक की एक मुट्ठी रखी। वो खाक की मुट्ठी आम नहीं थी, इसने जनाब सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा था और उनके घोड़े के असर से नीचे से वो मट्टी उठाई थी, जिसकी वजह से जब उस मट्टी को उस बछड़े के मुंह में रखा गया तो उसके अंदर से आवाज आने लगी, और इस सामरी ने, बदबख्त ने, उन लोगों को बरगलाना शुरू किया, बहकाना शुरू किया और कहने लगा कि यही तुम्हारा माअल्लाह माबूद है, खुदा है, इसी की इबादत करो। और लोग इसमें मुलव्वस भी हो गए, बहुत से लोग तो बच गए लेकिन बहुत सारे इसमें मुलव्वस हो गए और वो इसकी इबादत करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही फरमाई और बताया, حضرت موسیٰ بڑی تیزی سے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور اس بچڑے کو آپ نے خود توڑ دیا اور ان لوگوں کو بھی پھر سزائیں دی گئیں۔ ایک طویل واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ گائے کے حوالے سے گائے کے فوائد کیا ہیں اور اس سے کیا غذا ملتی ہے، ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے دودھ کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، مالک کریم کی قدرت ہے، وہ چاہتا ہے ایک اچھی چیز سے بری بھی نکالتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تو بری چیز سے اچھی بھی نکالتا ہے، وہ چاہتا ہے تو دو بری چیزوں کے درمیان، دو گندی چیزوں کے درمیان سے ایک پاک صاف چیز بھی نکالتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ پاک پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، انہی کے پیٹوں سے، ان جانوروں کے خون اور گوبر کے درمیان سے پاکیزہ خالص دودھ پلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی قدرت ہے۔ ایک جانور، ایک گائے جو کھانے میں چارہ کھاتی ہے، ہرے پتے یا خشک چارہ پیلے رنگ کا کھاتی ہے، جس سے اس کے جسم کے اندر خون بھی بنتا ہے، اس کے جسم کے اندر دیگر رطوبتیں بھی بنتی ہیں، ایک صاف ستھرا خالص سفید دودھ بھی بنتا ہے، اور ایک ہی جسم کے اندر یہ سب کچھ بن رہا ہے، لیکن پھر بھی قدرت کی شان ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کے انوکھے عجائبات ہیں۔ وہ نہ دودھ میں ایک قطرہ بھی خون کا ملنے دیتا ہے، نہ یہاں سے وہاں جانے دیتا ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ اس کے پیٹ میں فرس، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، یہ اس کی نعمت ہے، اور دودھ میں ویسے ہی شفا بھی ہے، اور اس کے اندر انسان کے جسم کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ کیا کیا اس میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ قدرت نے ہر چیز کے کچھ فوائد رکھے ہیں۔ جو چیز ہمیں ابس بھی نظر آئے لیکن اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ دنیا میں پائے جانے والی ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی حکمتیں موجود ہیں۔ دودھ کے اندر جسے ہم غذا بناتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسے غذا بنایا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بکری کا دودھ پینا، اونٹنی کا دودھ پینا ثابت ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دودھ کے اندر کتنے زیادہ فوائد پائے جاتے ہیں۔ یہ دودھ انسانی نشو نما کے لیے، جسم کی توانائی کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم اور مفید چیز ثابت ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ دانتوں کی مضبوطی کے لیے بھی گائے کا دودھ یہ بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے اندر وٹامن اے، بی، ڈی اور مختلف منرلز پائے جاتے ہیں کہ جو انسان کے جسم کو جن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ جو گائے کا دودھ ہے یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے فوائد ہیں، غذا بھی ہے، کھانا بھی ہے، اور پیاس بھی بجھاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی ایک بہترین نعمت ہے جو اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقیناً نعمتیں تو اتنی کہ شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی تو ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتے رہو نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے شکر کرنا چاہیے، اور شکر کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے، تسبیحات کرتے، ہر وقت اللہ رب العالمین ہی کی یاد میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی رہا کرتے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ دودھ میں ملاوٹ کرنا چونکہ بعض جگہوں پر کی جاتی ہے، آئیے اس کے بارے میں ایک وعید سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے دودھ میں ملاوٹ کرتا تھا، اور اس میں ملاوٹ کرنے کے باوجود وہ بغیر بتائے دھوکے سے لوگوں کو بیچا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیلاب آیا، اور جس کے نتیجے میں اس کی وہ گائیں بہ گئیں کہ جن کے دودھ میں وہ ملاوٹ کرتا تھا۔ اسی کا بچہ اب اس سے کہنے لگا کہ بابا، یہ وہی پانی ہے کہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ روز دودھ کے اندر ملاتے تھے، آج وہ سارا اکٹھا ہو کر آیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آپ ملاوٹ کر کے بیچتے تھے، آپ ہی کی اس گائے کو، اس جانور کو بہا کر لے گیا ہے، یہ آپ ہی کے کیے کا نتیجہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا دودھ میں ملاوٹ کرنا یہ غلط ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یہ بھی ایک دھوکے کی صورت ہے۔ اور بہت سی چیزوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے، ان سے بچا جائے۔ جو غلط ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کہ شریعت کو بھی یہی مطلوب ہے، اخلاق کو بھی یہی مطلوب ہے، اور بہترین معاشرے کی طرف عکاسی بھی اسی صورت میں ہوتی ہے بہترین معاشرے کی، کہ جب ہر ایک اپنے کام کو، اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ ایران کا بادشاہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ، اپنے رفقا وزراء کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، اور جب شکار کے لیے نکلا تو اس نے دور ایک شکار کو دیکھا جس کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، और उसका पीछा करते हुए वो इतनी दूर निकल गया कि उसे अपने रुफका और वुजरा की परवाह न रही। बिलआखिर वो बयाबान और जंगल के उस किनारे पर पहुंच गया कि जहां उसे अपने रुफका में से कोई नहीं मिलता था, ना ही वापसी का रास्ता सूझता था। वो परेशान था और इसी आलम में वहां उस इलाके पर अजीब तूफान की सी कैफियत हो गई, अजीब खतरनाक हवाएं चलने लगीं। वो घूमता फिरता अजीबो गरीब कैफियत के अंदर अचानक एक झोपड़ी के पास पहुंचा जहां एक बुढ़िया मौजूद थी। वो कहने लगा कि अम्मा, आज की रात मुझे आप अपनी झोपड़ी में गुजारने की इजाजत दे दें। उस माँ ने, उस बुढ़िया खातून ने उसे इजाजत दी, कहा ठीक है, आप हमारे मेहमान हैं, आप आ जाए। ना उसने बताया कि मैं शाह ईरान हूँ, ना उन्होंने पूछा और ना उन पर ये जाहिर हुआ। खैर, जब वो अंदर गया तो कुछ ही देर में उस बुढ़ी खातून की एक बेटी अपनी गाय को चरा कर ला रही थी, बहुत सी गाय थी। और जब उसने देखा बादशाह ने कि कैसी फरबा गाय हैं और कैसी बेहतरीन ये गाय हैं और इनकी कैसी नशोनुमा है और इनके थनों में कितना दूध है, तो वो कहने लगा कि लगता है इन पर टैक्स लगाना चाहिए, और टैक्स ये लगाता हूँ कि यहाँ से रोज शाही दरबार के अंदर, मेरे महल के अंदर यहाँ से कुछ ना कुछ दूध आएगा। मैं इन्हें कहता हूँ ये बहुत फरबा है और बहुत ज्यादा सेहतमंद है, तो इन पर टैक्स लगना चाहिए। इतनी देर में उस बूढ़ी खातून ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी जाओ और जाकर इस शख्स के लिए, इसकी मेहमान नवाजी के लिए गाय का दूध निकाल लाओ। अब जब वो बेटी गाय की तरफ बढ़ी और उससे दूध निकालना चाहती थी कि उसने देखा कि गाय के थनों में दूध नहीं है, तो उसने आकर वालदा को बताया कि वालदा, इसके थन भरे हुए हैं, इसके बावजूद दूध नहीं निकलता, दूध नजर नहीं आता। तो वो कहने लगी कि लगता है शायद आज हमारे बादशाह ने अपनी रियाया से कोई गलत काम करने का इरादा किया है। अब वो जो शाह ईरान था वो साथ ही था, उसने जब सुना कि इन्हें मालूम है मैं बादशाह नहीं हूं, और वाकई उसने एक गलत इरादा किया था, बेजा बिला वजह टैक्स और बिला वजह उन पर एक जुल्म और गसब की सूरत वो कर रहा था। फिर जब उसने ये देखा तो उसने दिल ही दिल में अपने इस बुरे फेल से इज्तिनाब करने का इरादा किया। अब जब दोबारा वो वालदा के हुक्म से दोबारा गई और बेटी जाकर दूध निकालने लगी, तो अब अच्छी वाफर मिकदार में दूध निकला। तो अब जब दूध निकला तो उस मेहमान ने भी पिया और उस बुढ़िया खातून ने भी पिया। तो यहाँ पता चलता है कि बड़ों के गलत काम करने से छोटों पर भी असर होता है, और न सिर्फ इतना, इंसान सिर्फ गलत काम का इरादा ही करे उससे भी उस पर उसके समरात, उसे बुरे नतायज मिलना शुरू हो जाते हैं। बुरे काम से भी बचना है और उसके इरादे से भी बचने की कोशिश करनी है, जिस हद तक, जिस कदर मुमकिन हो, इन बुरे अफआल से भी और बुरे अफआल के इरादों से बचना है। अल्लाह पाक हम सबको बुराइयों से और उनके इरादों से महफूज रखे। एक और बड़ी ही प्यारी दुआ और बड़ी ही प्यारी हदीस है जिसके रावी है जनाब सैयदना इकरिमा रदी अल्लाह तआला अन्हु। रिवायत करते हैं कि एक मरतबा जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि जनाब सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम एक मरतबा एक गाय के पास से गुजरे। जब गाय के पास से गुजरे तो गाय बड़ी कर्ब की हालत में थी, बड़ी ही तकलीफ दे सूरत में थी वो, और वो हमल से थी, हामिला थी। वो हजरत ईसा अलैहि सलातु व सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगी कि ए रूहुल्लाह, आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि वो मुझे इस कर्ब से, इस तकलीफ से निजात दे। दरअसल उसके हमल में जो बच्चा मौजूद था वो अंदर से तकलीफ दे रहा था। जनाब सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु वसलाम ने दुआ की और आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में यूं इल्तिजा की, या खालिकन नफ्सी मिनन नफ्स व या मुखरिजन नफ्सी मिनन नफ्सी खल्लिसहा। आपने यूं दुआ की कि या खालिकन नफ्सी मिनन नफ्सी व या मुखरिजन नफ्सी मिनन नफ्सी खल्लिसहा, ए एक जान को दूसरी जान से पैदा करने वाले और ए एक जान को दूसरी जान से निकालने वाले, इस गाय को इससे खुलासी दे दे। जब आपने दुआ की तो यकायक उस गाय ने बच्चा जना और उसे उस तकलीफ से, अजियत से खुलासी मिल गई। इसके अलावा गाय जैसी नेमत और इससे जो बहुत सारे फवायद हासिल किए जाते हैं, उन फवायद को जब हासिल किया जाए, खास तौर पे दूध, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत प्यारी नेमत है। जब दूध पीना नसीब हो तो नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम की सिखाई हुई दुआ भी पढ़नी चाहिए, और इसी के साथ साथ दीगर जितनी भी नेमतें जब मिलें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र की आदत बना लीजिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने शुक्र करने वाले, अपने इबादत करने वाले और अपनी तस्बीह करने वाले बंदों में शामिल फरमाए। मालिक हमसे दुनिया में राजी हो जाए, आखिरत में हम सबको सुरखरुई अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तुझ पे